ఓం శాంతి. ఆజ్ కే సంధ్యాకాలీన్ సత్ర మే ఇస్ భట్టీ మే పధారే హువే బిహార్ కే అలగ్ అలగ్ స్థానో కే బ్రాహ్మణ కుల్భూషణ్, ఒడిశా, హరియాణా, దిల్లీ, ఇన్ సభీ స్థానో సే,
బిహార్
సభీ జో భాయీ బహనే పధారే హువే, ఇస్కే అలావా ఆజ్ ఆన్లైన్ హమ్ సబ్సే జుడే హువే దేశ్ విదేశ్ కే భాయీ బహనే, హోవన్హార్ దేవీ దేవతాయే, ఉన్ సబ్కా ఇస్ సంధ్యాకాలీన్ సత్ర మే విశేష స్వాగత హై. ఆజ్ కా దిన్ బహుత్ ఖాస్ హై, విశేష హై, నా కేవల్ భారతవర్ష మే లేకిన్ భారతవాసీ సారే సంసార మే జహాన్ జహాన్ హై, ఆజ్ సభీ ఏక విశేష ఉత్సవ మనా రహే హై. ఉస్ దేవాత్మా కా జన్మ ఉత్సవ జో సబ్కే లియే ప్రేరక హై, ఆదర్శ హై, జిన్కే సమాన్ సభీ బన్నే కో ఉత్సుక్ హోతే హై, మాతాయే జిన్కే సమాన్ సంతాన్ చాహతీ హై, కన్యాయే జిన్కే సమాన్ పతి చాహతే హై, ఔర్ జో సారే సంసార్ కో సచ్మచ్ దిశా దిఖానే వాలే హై, ఐసీ దేవాత్మా శ్రీ కృష్ణ జీ కా ఆజ్ జన్మోత్సవ హై. తో ఆప్ సభీ కో శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి కి బహుత్ 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 హార్దిక్ శుభకామనాయే ఔర్ బధాయియాం. ప్యారే బాప్ దాదా భీ హమేషా హీ కహతే హై కి తుమ్ అల్ఫ్ ఔర్ బే కో యాద్ కరో, శాంతి ధామ్ ఔర్ సుఖ ధామ్ కో యాద్ కరో, అనాది ఔర్ ఆది స్వరూప్ కో యాద్ కరో, బాప్ ఔర్ వర్సే కో యాద్ కరో. తో హమేషా బాబా కే సాథ్ సాథ్ సంగమ యుగ్ కే సాథ్ సాథ్ బాబా సత్యుగ్ కో జరూర్ జోడతే హై, లేకిన్ సత్యుగ్ కి థోడీ కమ్ హీ చర్చా హోతీ హై ఆదికాల మే. ఔర్ బాబా నే ఆజ్ భీ మురళీ మే కహా అంత మే ఐసీ సుందర్ సుందర్ దృశ్య, సత్యుగ్ కే దృశ్య ఔర్ సాక్షాత్కార్ బాబా కరాతే రహేంగే, బహలాతే రహేంగే. ఆది మే తో సందేశ్యా లంబే లంబే సమయ తక్ సత్యుగ్ మే రహా కర్తీ థీ ఔర్ వహాన్ కే దృశ్యో కా ఆకర్ కే వర్ణన్ కియా కర్తీ థీ. ఔర్ ఫిర్ బాబా కహా కర్తే థే కి దేఖో ఐసీ సుందర్ దునియా మే తుమ్ చల్నే వాలే హో. బాబా కహతే హై కి యహాన్ కే వండర్స్ తో కుచ్ నహీ హై, సబ్సే బడా వండర్ తో స్వర్గ హై, సుఖ ధామ్ హై, ఔర్ వహాన్ జో చీజే హై ఉస్కీ కల్పనా భీ యహాన్ రహకర్ నహీ కీ జా సక్తీ. తో ఆజ్ శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి కే దిన్ సంసార్ వాలే తో ఇసే మనా రహే హై బస్, లేకిన్ హమ్ సబ్ భాగ్యశాలీ ఆత్మాయే వేసి బన్ రహే హై ఔర్ ఉన్కీ దునియా మే చల్నే కే లియే పురుషార్థ కర్ రహే హై. తో బడ భాగీ హై హమ్ సబ్ కి ఐసే శ్రేష్ఠ దునియా మే శ్రీ కృష్ణ కీ దునియా మే ఉన్కే సాథ్ చల్నే కే లియే, ఉన్కే సాథ్ రాస్ కర్నే కే లియే స్వయం కో తయ్యార్ కర్ రహే హై. లేకిన్ జబ్ కభీ భీ జైసే మైనే కహా స్వర్గ్ కీ బాత్ హోతీ హై, హమ్ అప్నే ఆది స్వరూప్ కో యోగ్ మే భీ అభ్యాస్ మే లాతే హై, తో చూంకి బహుత్ జ్యాదా ఉస్కా వర్ణన్ చింతన్ నహీ హో పాతా, ఇసీలియే జల్దీ హీ ఆదికాల్ సే నికల్ కే ఫిర్ హమ్ మధ్య కీ ఓర్ చల్ పడతే హై. ఇసీలియే ఆజ్ విశేష ప్రశ్నోత్తరీ సత్ర రఖా గయా హై తాకి హమ్ సత్యుగ్ కో అచ్చీ తరహ సే జాన్ సకే కి వహాన్ సబ్ చీజే కైసీ హై, హమ్ కైసే హై, తాకి ఉస్ జీవన్ కో జో హమ్నే జియా హై, అనేక బార్ జియా హై, ఉసే ఫిర్ సే అనుభవ కర్ సకే. ఔర్ ఇస్కే లియే హమారే సాథ్ హమేషా కీ తరహ ఆదరణీయ సూర్య భాయ్ జీ జో హమ్ సబ్కే ప్రశ్నో కా సుందర్ ఉత్తర్ ప్రదాన్ కర్తే హై, ఆజ్ హమ్ సబ్కో స్వర్గ్ మే లే చలేంగే ఔర్ వహాన్ కే జీవన్ కీ ఝల్కియాన్ దిఖాయేంగే, అనుభవ కరాయేంగే. తో భ్రాతా జీ ఆప్కో భీ జన్మాష్టమి కీ బహుత్ బహుత్ ఢేర్ సారీ శుభకామనాయే ఔర్ బధాయియాన్. ఔర్ ఇస్సే పూర్వ
ఆ రహీ భాయ్ ముజే తో లగ రహా ఆవాజ్ హీ నహీ జా,
సభీ తక్ ఆవాజ్ పహుంచ్ రహీ హై హాల్ మే,
సున్ రహా హై
హాత్ ఉఠా కే, ఆవాజ ఆ రే భాయ్ జీ. యాక్చువల్లీ ఛత్ పే బారిష్ హో రహీ హై, చూంకి జన్మాష్టమి హై తో ప్రకృతి భీ బహుత్ ఖుష్ హో గయీ హై ఔర్ వో భీ బర్సాత్ కర్ రహీ హై ఔర్ వో భీ చాహతీ హై కి మే భీ శ్రీ కృష్ణ కి జన్మోత్సవ మే షామిల్ హో జాఊ. తో భ్రాతా జీ బహుత్ బహుత్ అభినందన్, స్వాగత్ ఔర్ శుభకామనాఓ సహిత మే చాహూంగా కి ఆప్ జన్మాష్టమి మే హమారే సభీ భాయీ బహనో కో శుభకామనాయే దే, పశ్చాత్ హమ్ స్వర్గ్ కి ఓర్ చలే ఆప్కే సాథ్.
ఓం శాంతి. జన్మాష్టమి శ్రీ కృష్ణ కి తో హై హీ, लेकिन उसके साथ हम सब की भी है, ऐसा ही हम मान लें, क्योंकि उनके साथ साथ हम सब भी वहां पहुंचेंगे। एक बात जिस पर हमें भविष्य में बहुत ध्यान देना होगा, जब ये संसार समाप्त होने लगेगा, दुख ही दुख होगा, हम आने वाली दुनिया को अपने स्मृतियों में रखेंगे। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो, बहुत बीमार हो, दर्द हो, कठिनाई हो रही हो, श्वास न लिया जा रहा हो, लेकिन उसे बता दिया जाए 15 दिन के बाद तुम परफेक्ट हो जाओगे, तो वो दिन भी इंतजार करने लगेगा, उसके दुख भी कम हो जाएंगे। तो बाबा ये बात हमें कहते रहे कि मैं तुम्हें स्वर्ग के साक्षात्कार कराता रहूंगा और तुम इस दुखों की दुनिया को नष्ट होता हुआ देखते हुए आनंदित रहेंगे कि हमारा ऐसा स्वर्णिम संसार आ रहा है। उस संसार में सचमुच इतना सब कुछ होगा जो हमारी कल्पनाओं से भी परे है। मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं, प्रैक्टिकल, आप सभी को अपने परिवारों को चलाने के लिए रात दिन कितनी मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाएं, फिर भी कितनी कठिनाइयां हैं, कोई कमाने खाने की चिंता नहीं होगी, मजा आ जाएगा ना। ऑफिस जा रहे भागदौड़ करके, कंपिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, कितना कष्ट है, नौकरी छूट गई, दुकानें बंद हो गई, लॉकडाउन लग गया, कुछ नहीं, शरीर कोई रोग नहीं होगा, पुलिस दिखाई नहीं देगी, न मिलिट्री, न जेल, न हॉस्पिटल, कितना सुख होगा, धन संपदा उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं जैसे यहां पत्थर पड़े होते हैं, सतयुग में हीरे बिखरे होंगे, कोई वैल्यू नहीं होगी, कहां से आएंगे, ये आप सब देख लेंगे अभी धीरे धीरे। ये बड़ी सूक्ष्म गति है कि ये धरा जब खाली हो गई है धन धान्य से, ये फिर से भरपूर हो जाएगी और ये सब भरपूर करेगी प्रकृति। हम प्रकृति को पावन कर रहे हैं, वो रिटर्न में हमें अथाह धन संपदा देकर जाएगी। तो एक ऐसा सुंदर संसार जहां कोई समस्या नहीं, जैसे आजकल सभी के घरों में कारें, बाइक, साइकिल तो कहीं देखने में नहीं आती, बिहार में शायद ज्यादा हो, लेकिन आजकल जमाना बदल गया, यही समय बदलते बदलते हम वहां पहुंच जाएंगे कि हरेक के घरों के आंगन में पुष्पक विमान खड़े होंगे, दो चार पुष्पक विमान सोने और उसमें जड़ित हीरों से बने होंगे। कल्पना करो, घर छोटे नहीं होंगे कि 100 गज में बना लो भाई, 200 गज ही मिलेगी, थोड़ी सी जगह है ऊपर बना लो, कम से कम एक एक का घर 1 वर्ग किलोमीटर में होगा, उसमें तालाब, फल फूल, गाय, सुख सुविधाएं, कोई नापतोल नहीं होगी जमीन की, जितना चाहे ले लो, ऐसा सुख भरा संसार जिसमें मनुष्य कहेंगे उन्हें देवताओं को भी, जिसमें देवताएं संपूर्ण सुख शांति पवित्रता खुशी आनंद संपदा से भरपूर होंगे। तो ऐसी दुनिया की ओर हम चल रहे हैं, अब हमें उसका चित्र अपनी बुद्धि में बना लेना है। ये दुनिया आ रही है, हमारी दुनिया, हमारा सब कुछ, किसी और की दुनिया नहीं कि हमें उसमें प्रवेश करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार की, हमारी दुनिया, संपन्नता की दुनिया, जहां प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य होगा। आप कल्पना करो, हवाएं भी सुगंधित बह रही होंगी, प्रकृति का ऐसा सौंदर्य होगा जिसकी कल्पनाएं भी नहीं की जा सकती। तो ऐसे संसार को बाबा रचने आ गया है, हम उनके साथ रच रहे हैं। उस संसार के साथ हमारी बुद्धि में यह भी बहुत सुंदर स्वमान और नशा है और रहना चाहिए, भगवान के साथ हमारा ये सुंदर पार्ट है। वो संसार रचने आया, हम भी उसके साथी हैं। तो ऐसी दुनिया का हम आह्वान करते रहेंगे, आ रही है, जैसे एक फिल्म चलती हो, सीन आगे बढ़ रहे हो। बस ये कलयुग का सीन अब बढ़ रहा है तेजी से समाप्ति की ओर, और स्वर्णिम युग का सीन पर्दे पर आ रहा है इस विश्व ड्रामा के, जिसमें हमारा स्वरूप भी देव स्वरूप होगा। ऐसे चेहरे नहीं होंगे जिन पर चमक ही न हो, ऐसे चेहरे नहीं होंगे जो मुरझाएं हों, जिन पे तनाव की रेखाएं खिंची हों, परेशानियों के चिन्ह दिखाई दे रहे हों, चिंता स्पष्ट चमक रही हो। परिवार को चलाना है, बच्चों की शादी करनी है, पैसा नहीं है, क्या करें, सबसे मुक्त, ऐसा मुक्त संसार जहाँ विषय विकार नहीं, जहाँ दुख शांति रोग शोक नहीं, जहाँ प्यार ही प्यार है, प्यार भरी दुनिया आ रही है। आज उसके बारे में ही हम सब चर्चा करेंगे। चलें रूपेश भाई आगे।
रूपेश जी, इतना सुंदर आपने दृश्य हम सबके सामने रख दिया, ऐसा खाका खींचा, सब पहुंच गया स्वर्ग में, सब पहुंच गया स्वर्ग में। तो स्वर्ग में ही पहुंच करके उसका हम आनंद लेंगे, जिसके बारे में चर्चा करके ही इतना आनंदित हो रहे हैं, सबके चेहरे खिल गए हैं। वो सचमुच वो दुनिया कितनी सुंदर होगी, खूबसूरत होगी, और बड़े भाग्य की बात कि हम सब वहां चल रहे हैं, वहां के मालिक होंगे, राइट, पूरी दुनिया के मालिक, स्वर्ग के मालिक। तो ब्रदर जी, एक चीज विशेष करके जब हम स्वर्ग की बात कहते हैं, तो शुरुआत ही जैसे गीत में भी था, दिव्य गुणों से हम संपन्न होंगे, सर्व गुणों से संपन्न होंगे। तो ये सर्व गुण संपन्न स्थिति क्या है देवताओं की?
देखिए, जो आत्मा भरपूर होती है वो पूर्ण संतुष्ट हो जाती है। बाबा हमें यहां सद्गुण धारण करना सिखा रहे हैं। हम इन गुणों को तीन हिस्सों में बांट लें, ब्राह्मण जीवन के गुण, देवताओं के गुण, योगियों के। ब्राह्मण जीवन में आ गए एक मनुष्यों के गुण, एक योगियों के गुण, एक देवताओं के गुण। मनुष्य को बहुत सहनशील, मनुष्य और योगियों के गुण में समानता हो जाती है। मनुष्य को, योगियों को बहुत सहनशील होना चाहिए, देवताओं के लिए ये शब्द प्रयुक्त नहीं होता। योगियों को बहुत संतुष्ट होना चाहिए, देवताओं के लिए ये शब्द भी नहीं यूज होता। तो निरहंकारिता, संतुष्टता, सरलता, सहनशीलता, ये सब गुण, सुभावनाएं, ये मनुष्यों के, ब्राह्मणों के गुण हैं, योगियों के गुण हैं, और भी जिनकी लिस्ट आप सब जानते हैं, देवताएं, इन सब गुणों का स्वरूप हैं। ये गुण ऐसे जीवन में समा गए हैं, संतुष्टता ऐसी समा गई है कि कुछ भी इच्छा नहीं होती। निरहंकारिता ऐसी जीवन में आ गई है कि देवताओं को निरहंकारी नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत स्वीट और नम्र हैं। ऐसे ही जितने भी गुण 36 गुणों की लिस्ट लगी है पांडव भवन में, यहाँ तो नहीं है ना रूपेश भाई, इन्हें पांडव भवन जाना पड़ेगा देखने के लिए। ठीक है, 36 गुणों की लिस्ट बनी है, उनका स्वरूप बन गए देवता। उसमें बीज है संपूर्ण प्योरिटी। जहां प्योरिटी होती है वहां सुख शांति आनंद प्रेम खुशी सब हो जाती है। तो ये देवताओं के गुण हैं, सुख शांति पवित्रता खुशी बहुत प्रेम भरपूरता, कोई भी इच्छा नहीं। ये जो कमजोरियां हैं मनुष्यों की कलयुग में, ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा तेरा मेरा, ये कुछ नहीं है, एक बेहद की दृष्टि। वहां हम ये भी नहीं कहेंगे देवताओं में शुभ भावना है, शुभ भावना की वहां जरूरत नहीं पड़ती, शुभ भावना योगियों का गुण है। तो सभी गुणों का स्वरूप बन गए हैं। कुछ गुण देवताओं के बारे में वर्णन नहीं किए जा सकते, जैसे मैंने चर्चा की, हम नहीं कहेंगे देवताओं में बहुत संतुष्टता है, या वो बड़े निरहंकारी हैं, या उनका जीवन बहुत सरल है, या वो एक दूसरे को सम्मान देते हैं। नेचुरल हो गया है, आत्मिक भाव, आत्मिक प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आत्मिक भाव में स्थित है। इसको सर्व गुणों से भरपूर कहा जाता है, कोई अवगुण नहीं।
बाबा कहते हैं जो चीजें स्वर्ग में थीं वो यहाँ नहीं है, और जो यहाँ होंगी वो स्वर्ग में नहीं होगा। तो इसका भाव क्या है, क्या कुछ विशेष चीजें वहां थी जो यहाँ नहीं है?
देखिए, पहली चीज शरीर, जैसे यहाँ है वर्णन करने की जरूरत नहीं, कैसे हैं वहां कंचन काया होगी। यहाँ जो रोग शोक और मनोविकार हैं वो वहां नहीं होंगे, कोई मनोविकार नहीं, सुख सम भी नहीं। जो पाप कर्म यहाँ हैं वो वहां नहीं होंगे। जो संबंधों में टकराव स्वार्थ तेरा मेरा है वो भी वहां नहीं होगा। आकाश यही होगा, धरती यही होगी, चांद तारे यही होंगे, हवाएं भी यही बहती होंगी, प्रकृति भी यही होगी, पर ये मिट्टी के मकान नहीं होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो वो सब खत्म हो जाएगा। तो न ये नाते रिश्ते होंगे और नाते रिश्ते होंगे। तो जो यहां है वो वहां नहीं होगा। यहां कागज के नोट, वहां किसके? सोने की मुद्राएं होंगी। उसकी भी गिनती ज्यादा नहीं होगी, वैसे ही दे दिया करें उठा के, लो लेन देन चलता रहेगा। ये नहीं गिनते रहेंगे 5 स्वर्ण मुद्रा दे दो, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लो मुट्ठी से ले लिया, काम हो गया, अथाह होगा। तो जो कुछ यहां दिखाई देता है अब स्थूल में वो सब यहीं समाप्त हो जाएगा, और एक नवीन रचना हो जाएगी। ये एक वंडरफुल खेल है महाविनाश के बाद जो अगला समय बीतेगा। श्री कृष्ण के जन्म से और लक्ष्मी नारायण के गद्दी पर बैठने तक का जो बीच का पीरियड होगा, मुझे लगता है 35 साल होंगे। इसमें जो इस संसार की एक फिजिकली सुंदर रचना हो जाएगी वो अति वंडरफुल अद्भुत है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बाबा ने थोड़ा थोड़ा उसके लिए बताया है।
जी जी, योग पे यदि आए बता जी, बाबा को, ब्रह्मा बाबा को ये था कि बस अब मैं जाकर के कृष्ण बनूंगा, तो इस रूप में खुद को बाबा देखते थे, और सतयुगी ये जो स्वरूप था उनको यहाँ नशा भी देता था। राधे कृष्ण भी वहां एक हैं, लक्ष्मी नारायण भी एक हैं। अब यदि हम वहां अपने आप को देखें आदि रूप में, तो अपने आप को हम किस रूप में देखें, कहां देखें, ताकि वो नशा वो अभ्यास हम भी कर सकें?
बाबा जब भी सभी बच्चों को नयों को भी मिलते थे अव्यक्त में भी, तो बहुत बार ये कहते थे कि नंबर वन में आओ, और ये भी कह देते थे कि ब्रह्मा और सरस्वती के अलावा और किसी का पार्ट फिक्स नहीं हुआ है, आउट नहीं की गई है रिजल्ट, इसलिए ऐसा मानकर कि सभी सीट खाली हैं रेस करो। जैसे स्टूडेंट्स, उन्हें ये नहीं पता होता कौन टॉप करेगा, अंदाज तो रहता है, लेकिन 5-10 स्टूडेंट जो बहुत होशियार होते हैं वो सभी अधिकतम मार्क्स लाने का लक्ष्य बना लेते हैं, उस अनुसार मेहनत करते हैं। हम भी अपने देव स्वरूप को देखा करें, पहला चिंतन करेंगे पद, सेकंड बात करेंगे हम, हमें सबको देवता बनना है, कंचन काया होगी, बनाओ अपना चित्र भी, सिर पर डबल ताज होगा, चेहरे का सौंदर्य, चेहरे का नूर, चेहरे पर चमकता तेज और डिवाइन लाइट बड़ी आकर्षक होगी, सजा सजाया हमारा स्वरूप होगा, हमारे वस्त्रों पर भी सोने हीरों की जड़त होगी, प्रकृति बहुत सुंदर, खान पान अति श्रेष्ठ, सात्विक लेकिन बहुत स्वादिष्ट, यहां मैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी हूं, ऐसा अपना पिक्चर बनाए करें, पिक्चराइज कर लें, चित्र बना दें एक अपनी बुद्धि में, ऐसे होंगे हम, ये देह छूटेगा ऐसे बन जाएंगे, तो ऐसा चित्र बुद्धि में बनाया करें। तो लक्ष्मी नारायण एक नहीं होंगे, कई सारे होंगे, बाबा की मुरलियों में आपने सुना होगा, क्वेश्चन में आएगा शायद ये भी, तो बाबा की मुरली में आपने बहुत बातें सुनी हैं, वो अब अगले क्वेश्चंस के आंसर में लेते हैं।
ब्रदर जी, आपने वहां की सुंदर वहां हम अपने आप को कैसे विजुअलाइज करें, ये आपने हम सबके सामने सुंदर रूप रखा, लेकिन जब अपने आप को किसी पद में देखने की बात आती है कि हम सिंहासन में देखें या कहां देखें, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो वहां स्वर्ग में एक ही राजाई है, लक्ष्मी नारायण है, या अन्य राजगद्दियां भी साथ साथ चलते हैं?
बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, और सभी के बुद्धि में इसका आंसर बहुत क्लियर होना चाहिए। बाबा कहते 8 गद्दियां चलेंगी, इसके दो अर्थ हैं, अश्रत्नों के अनुसार, क्योंकि संसार की 8 आत्माएं जो सबसे महान हैं, जिसमें पहले 2 बाबा और मामा ब्रह्मा और सरस्वती हैं, ये महान आत्माएं, ये 8 गद्दियां इनके कारण चलती हैं, 8 लक्ष्मी नारायण, 16 हो गए। इसके अलावा दूसरा मीनिंग है कि सतयुग में, जैसे अब हमारे देश में केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकारें हैं चारों ओर, वहां केंद्र सरकार होगी दिल्ली में, और 8 गद्दियां चारों ओर और चलती रहेंगी। ऐसा समझ ले 9 लाख आबादी है, तो 1-1 लाख पर एक राजा, बीच में विश्व महाराजन, ये गद्दियां चलती रहेंगी। एक चिंतनीय बात मैं आपके सामने और रखता हूं कि सतयुग में एक राजा रानी कितने साल राज करेंगे, बोलो भाई लोग, बोलो आगे वाले हैं, क्या बोल रहे?
150 साल।
150 साल तो जन्म लेते ही गद्दी पर बैठ जाएंगे और मरने तक रहेंगे। सोचो, अब बहनों को चांस है सोचने का, 150 साल आयु है, राज कितना साल करेंगे? भाई बारिश हो रही है, अजय तुम बता दो क्या कह रहे? 40, 40 तो थोड़ा है लंबी आयु में, आयु का लगभग 75 साल। देखो भारतीय इतिहास में सबसे लंबा काल जो राज किया है जहां तक मुझे ख्याल है अकबर ने, 49 ईयर्स, 49 वर्ष। बाकी सम्राट अशोक और बहुत सारे बड़े सम्राट 35 साल 40 साल ऐसे राज करके गए हैं। 75 साल किसी ने नहीं किया, लक्ष्मी नारायण लगभग 75 to 80, 70, 75, 80 ऐसे सालों तक राज करेंगे। तो गद्दी हो गई 16, 18, तो संपूर्ण सतयुग में राज करने वाले होंगे 108 रतन। ये बात मुरलियों में बहुत आती है, नोट कर लेना न की हो तो। 108 रतन पूरे सतयुग में राज करते हैं और त्रेता के अंत तक प्रिंस प्रिंसेज की संख्या हो जाती है 16,108। इसलिए किसी को भी चांस है गद्दी पर बैठने का, उसके लिए 108 की माला में आना पड़े। और 108 की माला में वो आएंगे जो माया को संपूर्ण रूप से जीत लेंगे।
सभी सतयुग की इन सुंदर बातों को सुनकर उत्साहित हो रहे हैं और सभी गद्दी नशीन तो होंगे ना। कौन कौन गद्दी में बैठेगा जरा हाथ उठाएं।
तो बहुत राजा रानी यही बैठे। राजा बनेंगे रानी? राजा
राजा बनेंगे,
रानी कोई नहीं। ऐसा तो ना करो भाई, राजा बिना रानी के शोभित होगा? राजा रानी तो अपना चित्र बनाए करें, विजन बनाए करें, मैं राजा हूं या रानी हूं, गद्दी नशीन हूं, सिर पे डबल ताज और सिंहासन पर विराजमान हूं। अब सोचो जहां राज ही लक्ष्मी का हो कितना धन धान्य होगा, वहां चिंतन करेंगे इस तरह।
चलिए इस गहन चिंतन के साथ अब थोड़े से उन प्रश्नों की ओर भी चलें जो लगता है कि सचमुच भोजन की बात। व्रता जी, कहा जाता है कि वहां 56 प्रकार के व्यंजन किए जाते हैं, देवताओं को 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, वो खाते हैं। तो क्या नाश्ते में, भोजन में और रात को तीनों ही समय 56 प्रकार के व्यंजन?
बदहजमी हो जाएगी देवताओं को, तो इतना तो देवता खाते नहीं। 56 प्रकार के भोग तो कभी कभी बनेंगे विशेष अवसरों पर, बाकी तो देवताओं के लिए खाने को फल ही बहुत ज्यादा होंगे, नेचुरल भोजन ज्यादा होगा। सतयुग के प्रारंभ में पका हुआ भोजन कम से कम यूज किया जाएगा, क्योंकि आग अग्नि विनाश काल में यही समाप्त हो जाएगी। जब तक दोबारा अग्नि का की खोज हो के अग्नि कैसे जलाई जाए, तब तक नेचुरल फूड खाया जाएगा। थोड़े बहुत मिष्ठान जरूर बनते रहेंगे, लेकिन उनके तरीके कुछ और होंगे, नेचुरल जैसे बिना आग के शुरू में कुछ समय, फिर अग्नि का आविष्कार हो जाएगा और त्रेता में देवताएं अन्न का ज्यादा प्रयोग करेंगे। सतयुग में बहुत कम प्रयोग होगा। तो 56 प्रकार की चीजें तो वहां बहुत होंगी, फल ही इतने होंगे और बहुत ऊंचे नहीं होंगे कि ऊपर चढ़कर तोड़ने पड़े। बाबा ने कहा तोड़ और खाओ, और इतने यहां भी बहुत होते हैं ऐसे ही, हमने पेड़ लगे यहां भी, मैं तो कई जगह गए सेंट्रो में, ऐसे पेड़ हैं। एक बारहमासी आम था, बारहमासी 12 मास जिसमें आम आते हैं, वो जमीन पे ही था, 3 फुट ऊंचा और जमीन पे फैला हुआ, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे आम लगे हुए थे। सतयुग में तो अति स्वादिष्ट होंगे, यहाँ तो स्वाद रहा नहीं, बनावटी स्वाद है। तो भोजन की सामग्री वहां बहुत ज्यादा होगी, जितना चाहे खाना, कोई रोकेगा नहीं, खरीदना नहीं पड़ेगा, पैसों की जरूरत नहीं, सब माल अपना, खुले दिल से खाते रहे।
जी जी प्रथम जी, आपने जो बात कही उससे दो प्रश्न निकल के आए हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, यदि फल फूल ही खाना है तो फिर ये 56 भोग की बात, फिर तो व्यंजन मतलब कुछ ऐसा जो वैरायटी हो, तो 56 तो फिर तभी कहा जाएगा ना।
बनाएंगे थोड़ा, बनाएंगे नहीं तो बहनों को काम तो कुछ चाहिए घरों में, थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, बनाते रहेंगे, 5-7 चीजें तो रोज बनती रहेंगी, क्योंकि कुछ ज्यादा काम तो वहाँ होंगे नहीं सबको, और सबके पास काम करने वाले बहुत होंगे, वो भी फ्री होंगे, ले जाओ जितना माल चाहिए, तो कुछ कुछ तैयार भी किया जाएगा। आज भी कुछ जिसको हम टोली कहते हैं, स्वीट्स कहते हैं, वो ऐसे ही तैयार हो जाती हैं कि बिना अग्नि के, बिना मेहनत के, हाथों से ही कई चीज मिला के तैयार कर दी जाती हैं। थोड़ा बहुत सिस्टम होगा पकाने आदि का और तैयार हो जाएंगे।
आपने अग्नि की भी बात कही, वहाँ पांचों तत्व सुखदायी होंगे, हमें सुख देंगे, तो अग्नि तत्व भी तो सुख देगी ना।
देखिए अग्नि तत्व तो भोजन के लिए भी काम आता है, भोजन पचाने के लिए भी काम आता है, पेट में भी अग्नि होती है जो हमारे भोजन को पचाती है, मंदाग्नि, मंदाग्नि कहते हैं शायद, कुछ और नाम है भाई,
जठराग्नि।
अगर वो मंद पड़ जाए तो पाचन शक्ति बहुत खराब हो जाती है, तो सतयुग में ऐसा नहीं होगा, जठराग्नि संपूर्ण रूप से काम करेगी, अग्नि पूरा साथ देगी, अग्नि सुखदायी होगी। इसके कई मीनिंग है, सूरज अग्नि का स्रोत है, उसकी लाइट, उसकी हीट सुखदायी होगी, ऐसे नहीं होगी कि गर्मी में बाहर ही ना निकल सके, एसी चलाना पड़े, उसकी धूप बहुत सुखदायी होगी, आनंदकारी होगी, इसका एक ये भी मीनिंग है।
तो क्या हम अब नेचुरोपैथी की ओर बढ़ने लगे?
सुना सभी ने, नेचर क्योर वाले सिखाते हैं बिना पका हुआ भोजन खाओ, तो सतयुग में क्योंकि मेहनत ज्यादा नहीं होगी, मैंने कहा थोड़ा बहुत पकाएंगे जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं वहां समोसे बनाएंगे, पकोड़े तलेंगे या और बहुत सारी चीजें तली जाएंगी, नेचर क्योर से जुड़ा हुआ भोजन ही सतयुग में होगा, बड़ा नेचुरल, जो अति स्वादिष्ट होगा, अति सुखदायी होगा, बहुत ज्यादा पौष्टिक होगा।
जी स्वर्ग में आपस में मिलने की प्रक्रिया क्या होगी? क्या हम गले मिलेंगे, नमस्कार करेंगे, दृष्टि से मिलेंगे या हाथ मिलाएंगे?
बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज भी सारे संसार में आपस में मिलने की जो प्रोसीजर हैं वो अलग अलग हैं। आप सभी को पता हो, कुछ देशों में जब लोग मिलते हैं तो एक दो को चूमते हैं, कोई भी हो, कुछ देशों में लोग मिलते हैं, कईयों के ऐसे तरीके होते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में आप जानते हैं, कई लोग मिलते हैं आधे झुक कर जैसे नमन करते हैं, ऐसे मिलते हैं, कई देशों में गले मिलते हैं, हमारे देश में भी कई लोग हाथ जोड़कर मिलते हैं, कई नमस्ते राम राम कहकर मिलते हैं, ब्राह्मण दृष्टि से मुलाकात करते हैं, इन सब का मिला जुला रूप देवताओं के पास होगा। हम मिलेंगे, गले भी लगेंगे, दृष्टि से मिलेंगे, और हाथ की भी कुछ प्रक्रिया होनी तो चाहिए, अभी मैंने देखा नहीं, कुछ तो होगा जरूर हाथ की प्रक्रिया भी।
जी जी जी,
हाथ जोड़ने की बात तो नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि ये भक्ति का स्वरूप है, पर कुछ कुछ संबोधन अवश्य होगा।
जब हम पंछियों को देखते हैं उड़ता हुआ, तो फिर उड़ने की इच्छा हुई संसार में भी, और फिर विमानों की खोज हुई, तो वहां पे भी हम जब पंछियों को देखेंगे उड़ते हुए, तो भी क्या खुद उड़ने की इच्छा नहीं होगी? सीरियल्स में हम देखते हैं या शास्त्रों में वर्णन है कि देवता आकाश मार्ग से भी यात्रा करते थे, खुद भी उड़ते थे, तो क्या ऐसा संभव है कि वहां देवता?
देखिए कुछ रिसर्च की इच्छा तब होती है मनुष्य को, आप में से जो विज्ञान पढ़े हैं उन्होंने ये एक बात सुनी होगी हिंदी में ऐसे, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सतयुग में कोई आवश्यकता होती नहीं, इसलिए आविष्कार हो, कुछ खोज हो, कोई चिंतन हो, पक्के पक्षी उड़ रहे हैं हम भी उड़ें, ऐसी इच्छा ऐसा संकल्प उठता नहीं। क्योंकि विज्ञान, आप सबको ये हुई ये बात मालूम हो, सतयुग में विज्ञान परफेक्ट है, इसलिए कोई नई खोज की आवश्यकता नहीं है। एक रहस्य जान लें आप, बाबा ने बता दिया था बहुत पहले कि अब कलयुग के अंत तक सतयुग, ये विज्ञान की जो रिसर्च हो रही है, रिसर्च माना इनकम्प्लीट है, और रिसर्च कभी परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च करते करते एक दिन अभी कलयुग के अंत तक विज्ञान को परफेक्ट बना देंगे और कुछ खोज करना बाकी नहीं रहेगा। यही हमारी साइंस परफेक्ट हो जाएगी और देवताओं के लिए जो कुछ चाहिए हमें वहां उसका निर्माण करके हमें देकर जाएंगे वैज्ञानिक। यहीं पुष्पक विमान की रिसर्च यहीं हो जाएगी, उसके निर्माण यहीं हो जाएंगे, देवता केवल बनाया करेंगे। थ्योरिटिकल नॉलेज की जरूरत नहीं रहेगी, किसी रिसर्च की जरूरत नहीं रहेगी। तो जब विज्ञान परफेक्ट हो जाएगा, ध्यान से सुन लेंगे, तो संपूर्ण विज्ञान, परफेक्ट विज्ञान इम्परफेक्ट मनुष्यों का विनाश करेगा। जो अपूर्ण मनुष्य हैं उनका विनाश करेगा और जो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स हैं देवता, उनके काम आएगा। परफेक्ट विज्ञान इम्परफेक्ट मनुष्यों के काम नहीं आ सकता। तो विज्ञान अब संपूर्णता की ओर बढ़ेगा, इसके द्वारा बनाए गए बॉम्ब्स कलयुगी इम्परफेक्ट अपूर्ण मनुष्यों का संहार करेंगे और इसकी संपूर्णता देवताओं के काम आएंगी। शास्त्रों में दोनों बातें मिला दी हैं, फरिश्ते स्वरूप द्वारा आकाश भ्रमण करना, अंतर्वाहक शरीर द्वारा, उसको देवताओं से मिला दिया कि देवता भी उड़कर चले जाते थे, पर देवता उड़कर जाएंगे पुष्पक विमानों में और पुष्पक विमानों की स्पीड इतनी ज्यादा होगी, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हो वो जानते होंगे, साउंड की स्पीड एक मिनट में इतने किलोमीटर, 300 से कुछ ज्यादा है। तो सतयुग में पुष्पक विमानों की स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा होगी, इसलिए कहीं भी उड़कर जाना उनके लिए मिनटों की बात होगी। इसलिए ऐसा कहावत में आ गया कि देवता उड़कर कहीं भी जा सकते थे।
साउंड की स्पीड से उड़ने वाले पुष्पक विमान जब देवताओं के पास हैं, तो कभी क्या उनके मन में ये ख्याल नहीं आएगा कि इस तारे पे चलूं, उस ग्रह में चलूं, वहां चलूं, तो थोड़ा वहां तो जा सकते हैं इस स्पीड से?
बहुत अच्छे पुष्पक विमान होंगे आप सबके पास, आप सबके पास, हमारे पास नहीं, केवल सोच लो जरा, आप सबके पास। बटन दबाया, इशारा किया, आज भी इशारे से विज्ञान की इलेक्ट्रॉनिक साधन बहुत काम करने लगे। इशारा किया, पुष्पक विमान उड़ गया, इशारा किया नीचे, तो ये सब साधन हम सबको मिल जाएंगे
जी। तो क्या ऊपर अंतरिक्ष में भ्रमण करने की भी कामना होगी और कभी जाएंगे वो?
हाँ, देखिए जब दूसरे देवता आकाश में भ्रमण करेंगे तो आनंद तो होगा ही। आजकल भी लोग, अमेरिका के लोग करोड़ों रुपए खर्च करके एक घंटा आकाश भ्रमण करके आते हैं, दूर, थोड़ा बहुत दूर सुना होगा आप सबने, ये रॉकेट लेकर कोई कंपनी है जो किराया लेती है, सीट बुक कराती है और अंतरिक्ष में 50 मिनट की यात्रा कराती है बहुत दूर, तो वहां उनको आनंद आता है। देखो कितने करोड़ रुपए टिकट के लगते हैं 50 मिनट के लिए केवल। तो मनुष्य के मन में ये इच्छा तो होती है, तो आकाश भ्रमण में आनंद आएगा और देवताओं के मन में ये इच्छा अवश्य रहेगी, क्योंकि कामकाज तो ज्यादा होंगे नहीं, ऑफिस जाना है, खाना बनाना है, ज्यादा परेशानी, सब सहज होगा, इसलिए घूमते रहेंगे पहाड़ियों पर।
पहाड़ियों पर तो ठीक है, लेकिन ऐसा कि चलो चांद आज बहुत सुंदर लग रहा है, वहां चल के खाना खाते हैं,
चांद पे जाना तो संभव नहीं होता, फिर तो सूरज पे जाने की भी सोचने लगेंगे, जल जाएंगे सब, तो चांद तक तो नहीं, पर आकाश भ्रमण अवश्य करेंगे।
टेली कम्युनिकेशन का क्या सिस्टम होगा, दूर संचार? मैं दिल्ली में हूँ और कोई यदि बिहार में है, मुझे कैसे संदेश देना होगा, क्या साधन?
बाबा ने इसका उत्तर दे दिया था। आपको बता दें, एक अव्यक्त मुरली चली है जिसमें सतयुग का पूरा विजन, सतयुग कैसा होगा, बाबा ने पूरा चित्र खींच दिया था उसमें अव्यक्त बाबा ने। तो ये भी प्रश्न था कि क्या टेलीफोन होंगे? उन दिनों ये मोबाइल फोन, एंड्रॉइड फोन आदि नहीं थे, फोन होते थे सिंपल। तो बाबा ने उत्तर दिया था कि टेलीफोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी को कुछ मैसेज देना है अपने उसमें बैठे पुस्तक विमान में, एक मिनट में पहुंच गए, मैसेज देकर आ गए। और ज्यादा कामकाज तो होगा नहीं कि भाई मेरा केस हो गया, बताओ क्या करूं, जल्दी आओ, पुलिस आ गई है घर में, अब बिजनेस में लॉस हो गया, मदद करो मुझे, ये सब तो है नहीं। कोई फोन इतने चलाने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कभी कभी जरूरत पड़ा करेगी, फंक्शन हो रहा है, हाँ भाई मैसेज दे आओ, फटाफट 15-20 मिनट में सबको मैसेज दे आए, ये संचार का की व्यवस्था होगी।
जी जी, मतलब जैसे कबूतरों को भेजा जाता था वैसे एक संदेश वाहक देवता भी होगा, वो फट से जाके संदेश देखे।
हम अभी देख लें, जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं उन्हें पता है टेलीफोन थे क्या पहले? हमारे देखते देखते एसटीडी लगा, पहले तो फोन करना ही मुश्किल काम होता था, हम लोगों से फोन चलाने भी नहीं आते थे। सच्ची बात, फोन लगे तो पता चला ये कैसे चलते हैं, फिर ये फोन आ गए हाथ वाले, जेब वाले, उससे पहले कुछ था ही नहीं, कैसे मैसेज देते थे, उसके पहले पत्र लिखे जाते थे, उससे पहले पत्र भी नहीं थे, पोस्टल डिपार्टमेंट था ही नहीं, लोग एक दूसरे के पास जाकर निमंत्रण दे आते थे। सतयुग में यही स्वरूप रहेगा।
एक बार देवता दादी जी ने, दादा जी, देवता दादी कमल सुंदरी दादी जी थी जो लंबे समय तक स्वर्ग में रहती थी, या उनको बहुत अच्छे सुंदर ट्रांस का बाबा ने वरदान दिया हुआ था। तो देवता दादी जी ने अपनी एक क्लास में ये बात कही थी कि लक्ष्मी नारायण जो है वो 3 बजे तक रास मंडल में रहते हैं और फिर 4 बजे आकर के आराम करते हैं, फिर 6 बजे दास दासियां आकर उन्हें उठा देते हैं। तो क्या स्वर्ग में बहुत अधिक सोने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वहां तो तन मन की थकान नहीं है, तो 4-5 घंटे सोने की जरूरत नहीं, रात को भी घूमेंगे और स्वर्ग का आनंद लेंगे, क्या ये बात होगी?
एक्चुअली पहली बात तो ये है कि जिन भी संदेशियों के मैसेज होते थे वो अलग अलग ढंग के होते थे, इसलिए सभी के मैसेज परफेक्ट तो ऐसा भी नहीं होता। देवताओं को 3 बजे तक जगकर फंक्शन करने की कोई जरूरत नहीं, क्या आप समझते हैं होगी? क्यों 3 बजे तक जगेंगे, अगला दिन पड़ा है ना जो रह जाएगा, शाम को 6 बजे शुरू कर देंगे, 5 बजे शुरू कर देंगे, 8-9 बजे पूरा कर देंगे। 3 बजे तक जग कर कोई फंक्शन करने की उनको कोई जरूरत नहीं होगी, इसलिए सोना तो 5-6 घंटे होगा ही। बाबा से ये पूछा था कईयों ने, आगे बैठे थे भाई, कि क्या बाबा सवेरे उठना पड़ेगा सतयुग में? बाबा हंसने लगे कि सवेरे उठना ही भारी लगता है सबको, बाकी सब काम ठीक है, बाबा सवेरे सुला दो, बाकी सब अच्छा है आपका। बाबा ने कहा जब तुम देवताओं को उनके मंदिरों में भी 5 बजे से घंटी बजा के जगाने लगते हो, तो जब तुम देवता होंगे तो 5 बजे के बाद नहीं सोएंगे, वहां सोना और जगना बहुत नेचुरल होगा, क्योंकि शरीर सतो प्रधान है, कोई थकान नहीं है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है। 4 बजे से 4:30 बजे से चिड़ियां चहचहाने लगेंगी पेड़ों पर, वही उठाएंगी और बड़े आराम से नेचुरल रूप से आंख खुलेगी उठेंगी। ये नहीं होगा थोड़ा 5 मिनट और सो लूं, 4 बजे करते हैं ना सभी माताएं ज्यादा करती हैं, 5 मिनट रह गए 4 बजे में, 5 मिनट और सो लूं, और फिर सीधा 5 बजे उठते हैं, करते हैं या नहीं? ये सब देवताओं को ये सब नहीं होगा कि 5 मिनट और सो लूं, फ्रेश आंख खुलेगी उठेंगे, कार्य कोई टेंशन वाला तो है नहीं, घूमे फिरेंगे नहाए धोएंगे।
जी बाबा, जब गर्भ जेल और गर्भ महल कहते हैं तो ये गर्भ महल का क्या भाव है सतयुग में जो होगा?
गर्भ महल का भाव यही है कि कलयुग में गर्भ जेल यानी गर्भ में बच्चा कष्टों में रहता है, उसकी गर्भ में लेटने की पोजीशन भी ऐसी रहती है जो सुखदायी नहीं होती, कष्ट मिलता है उसको, माँ ने अगर लाल मिर्ची खा ली महाराष्ट्र में लाल मिर्ची बहुत खाते हैं, साउथ में तो बच्चे का शरीर भी जैसे जलने लगता है, मुश्किलात होती है उसे। तो यहाँ गर्भ कष्टदायी स्थिति में है, चार पांच मास जो बच्चा गर्भ में रहेगा उसमें उसे पीड़ा होती है, इसलिए इसको गर्भ जेल, और सतयुग में कोई पीड़ा नहीं होती, सुखदायी स्थिति है, इसलिए उसको गर्भ जेल, वो गर्भ महल कहा जाता है। महल की तरह आनंद पूर्वक सुखदायी स्वरूप से बच्चा रहता है।
सतयुग में जो देवी देवताओं के नाम होंगे क्या वही होंगे जो आज हम जानते हैं या फिर कुछ और नाम?
आजकल के जो बहुत अच्छे नाम हैं वही देवी देवताओं के नाम होंगे, हम अच्छे नामों को जानते हैं। आजकल तो किसी का नाम मिर्ची भी रख दिया जाता है, किसी का गोबर, एक का नाम गोबर। मैंने कहा क्यों भाई, और नाम नहीं मिले थे? कहा सारे बच्चे मर रहे थे तो माँ ने कहा गोबर रख दो नाम, किसी की नजर नहीं लगेगी, मरेगा नहीं, वो जी गया। तो यहाँ तो अब करोड़ों की संख्या हो गई तो नाम भी कम पड़ गए हैं, लेकिन जो अब अच्छे नाम है आप उन सबको जानते हैं देवी देवताओं के, वही सुंदर नाम जो मीनिंगफुल हैं, जो अर्थ सहित हैं, जिनका उच्चारण करने से ही जरा मजा सा आता है, ऐसे सुखदायी नाम होंगे।
बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो देह अभिमान होता नहीं, तो फिर वहाँ इतनी साज सजावट या देवताओं का भी जो श्रृंगार होगा तो क्या वो देह अभिमान नहीं कहलाएगा? वहाँ भी तो शरीर का श्रृंगार होता है, तो खुद का श्रृंगार करना या करवाना ये भी तो देह अभिमान है।
शरीर का श्रृंगार करना या कराना ये देह अभिमान नहीं है। देह अभिमान का स्वरूप होता है पांच विकार, वो वहाँ होते ही नहीं। सतयुग के बारे में मुझे याद है जब हमारा आबू का म्यूजियम बना तो हम लोग डेली शाम को म्यूजियम समझाने जाते थे, तो विदेशी आते थे, कुछ मुझे उपाधियां मिल जाती थी, तो विदेशी पूछते थे ये आपके देवी देवता तो बड़े भौतिकवादी हैं, समझ गए ना, भौतिकवादी, सजे सजाए जेवर पहने हुए हैं, सोना हीरा ये सब, ये देवता क्यों हैं? उत्तर है देवताओं में मैटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म का संतुलन है, भौतिक सुख संपदा और आध्यात्मिकता दोनों का सुंदर संतुलन है जीवन में। तो सब कुछ होते हुए मान लो हमारे शरीर पर 16 श्रृंगार हैं, हीरे जड़े हैं, हीरों की मालाएं पहनी हुई है, हाथ सब शरीर पैर हीरो से सोने से सजे सजाए हैं, लेकिन उन सब चीजों में देवी देवताओं की कोई आसक्ति नहीं है। क्या वो नहीं है तो बुरा लग रहा है, मन उदास हो गया है, इसलिए जहां आसक्ति हो जाती है देह में उसको देह अभिमान कहते हैं, वहां सभी अनासक्त हैं, सब कुछ होते, आध्यात्मिक जीवन है, प्रैक्टिस नहीं है, सोल कॉन्शियस हैं, जानते नहीं मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा के सारे गुण और लक्षण जीवन में हैं, तो दोनों चीजों का संतुलन है।
बाबा कहते हैं कि तुम्हारे महल यमुना के कंठे पर होगा, तो यदि सभी का महल यमुना के कंठे पर होगा तो अन्य भूभाग में क्या होगा?
देखिए सबके महल तो यमुना के कंठे पे नहीं होंगे, नहीं तो कैसा लगेगा स्वर्ग, लंबा सा एक ट्रेन का डिब्बा जैसा नहीं हो जाएगा? ऐसा नहीं है, कुछ राजाओं के महल यमुना के किनारे होंगे, बाकी आधा भारत, अब चित्र बना लो अपनी बुद्धि में, इधर मध्य प्रदेश तक, उधर कश्मीर तक, पाकिस्तान का भी हिस्सा, इस सब में देवता बसे होंगे, इसलिए एक एक के पास बहुत जगह होगी, केवल यमुना के किनारे नहीं गंगा के किनारे भी, और जो नदियां होंगी उनके आसपास भी, नदियों पर ज्यादा रहेंगे क्योंकि पीने के लिए बोरिंग तो जमीन में नहीं की जाएगी, बोरवेल नहीं होंगे, नदियों का पानी ही बहुत स्वीट होगा, उसी को यूज किया जाएगा, इसलिए देवता भी फैले होंगे। आप समझो 9 लाख 10 लाख देवताओं के घर, उनके घर कम से कम 2.5-3 लाख तो होने ही चाहिए ना, तो एक एक के बड़े बड़े घर होंगे 2-4-5-7 किलोमीटर में राजाओं के, उसमें खेती सब साधन होंगे, फिर उनके परिवार बढ़ते जाएंगे, उसमें हिस्से बढ़ते जाएंगे। तो शुरू में कम से कम चौथाई भारतीय नॉर्थ इंडिया का स्वर्ग में देवताओं का यहाँ वास होगा। साउथ वाले सुनेंगे तो कहेंगे हमारे साउथ में नहीं होगा क्या? साउथ का जो हिस्सा है महाराष्ट्र से आगे का, ये सागर में समा जाएगा।
जी जी ब्रदर जी, जीव जंतुओं के बारे में क्या कहेंगे कि वहाँ बहुत सारे जंगल हैं, तो अभी जो जीव जंतु हैं वो सारे जीव जंतु वहाँ होंगे? और ज्यादातर प्रश्न आता है कि वहाँ यदि शेर हैं तो शेर क्या खाएंगे? वो हिंसक तो नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन खाना क्या होगा?
देखिए बाबा की मुरली में आ गया है, अभी सुन लेंगे आप दो चार दिन में, कि वहाँ मनुष्य भी कम है यानी देवता भी कम है, तो जीव जंतु पशु पक्षी भी कम है। धीरे धीरे सबकी आबादी बढ़ती है, पेड़ पौधे ही होंगे, जंगल बहुत होगा, सागर भी बहुत चीजें अपने में समा लेगा। शेर आदि होंगे या नहीं ये तो वहीं चल के देखेंगे, लेकिन आज भी संसार के कुछ हिस्सों में शेर हैं जो हिंसक नहीं हैं। दो चार जगह के शेरों की घटना आती रहती है, तो होंगे या नहीं वो तो वहां चल के देखेंगे। ये तो एक कहावत है कि शेर और गाय भी एक घाट पानी पीते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि एक घाट पानी पी रहे होंगे, इतना प्यार होगा, हिंसक वृत्ति पूरी तरह समाप्त हो गई होगी। और अगर शेर होगा भी तो जब सभी मनुष्य अहिंसक हैं तो जीव जंतु भी अहिंसक ही होंगे। जब सबका ही भोजन सात्विक है तो जीव जंतुओं का भोजन भी सात्विक होगा। अब तो चिड़ियाएं देखो आप, शेर की बात तो छोड़ो, चिड़ियाएं भी मांसाहारी हैं। देखिए आपने, कीड़े खाती हैं बहुत, सतयुग में चिड़ियाएं भी सात्विक भोजन करेंगी। तो जैसा मनुष्य का सब कुछ होता है व्यवहार भोजन अन्न, वैसा ही जीव जंतुओं का भी हो जाता है।
जी जी बाबा कहते हैं कई चीजें जो हैं वहां नहीं होंगी जो दुखदाई हैं, कष्टदाई हैं, लेकिन यदि विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो फिर जब द्वापर युग या कलयुग आएगा तो फिर वो कहाँ से उत्पन्न होंगे? क्या ऐसा है कि ये जो स्पीसीज हैं वो सब दूर जंगलों में होंगे और उनका देवी देवताओं के पास आना नहीं होगा?
देखिए दुखदाई जीव जंतु सांप, बिच्छू, मेंढक, ये सब चीजें, मेंढक तो वैसे दुखदाई नहीं होता, पर कीड़े मकोड़े जो काटते रहते हैं, चींटियां भी काटती रहती हैं, ये सब सतयुग में नहीं होंगे। रही बात कहाँ से आएंगे, ये प्रकृति की ऐसी सुंदर रचना है कि जब समय होता है तो प्रकृति भी बहुत चीजों का निर्माण करती है। ये बड़ा गुह्य राज है, एक तो ये बात है, दूसरा ये संभव है कि दूर के जंगलों में हर प्रजाति की कोई दो चार किस्में रही हों जिनका संबंध देवताओं से रहा ही न हो, दूर हो, अफ्रीकन देशों में हो, थोड़ा बहुत अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के कंट्री बचे रहेंगे, वहां केवल भूमि होगी, बस्ती नहीं होगी, हो सकता है भिन्न भिन्न जंगलों में छोटी मोटी चीजें बची हों, लेकिन वो भी दुखदाई नहीं होंगी उस टाइम। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये सांप जो है इसकी आकृति भी नेवले जैसी थी, लेकिन कभी जलवायु बहुत ज्यादा परिवर्तन हुई थी तो ये लंबा हो गया। ये सत्य हो सकता है कि त्रेता के अंत में जब फिर से सब कुछ बदलता है, युग बदलता है, प्रकृति बदलती है, प्योरिटी इम्प्योरिटी में बदलती है, सात्विकता तामसिकता की ओर बढ़ती है, तो जीव जंतुओं की आकृतियों में भी बहुत परिवर्तन होता है, क्योंकि सतयुग की सारी संपदा, त्रेता की सारी संपदा जमीन में समा जाती है।
बाबा कहते हैं वहां सदा ही सदाबहार मौसम होगा, ये कैसे संभव है?
देखिए प्रकृति के हम मालिक होंगे, एक तो ये बात, प्रकृति बहुत सुखदायी होगी, लेकिन अभी अंदाज है इस महाविनाश में क्या क्या होगा, ये सारी चीजों की परिकल्पना कोई भी नहीं कर सकता। पर ऐसा कहा जा रहा है कि अब महाविनाश में धरती जो झुकी हुई है ना 23.5 डिग्री एंगल पे, सुनामी में शायद 1 डिग्री कम हो गया था, 22.5 पे आ गई। ये कुछ ऐसी घटनाएं होंगी विनाश काल में, ऐसे बड़े भूकंप होंगे जो किनारों पर ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर माताएं तो कम समझती होंगी, बर्फ के पहाड़ हैं बड़े बड़े हिमालय जैसे, वो पिघल जाएंगे तो धरती का बैलेंस बिगड़ जाएगा और ये धरती जो टेढ़ी है ये सीधी हो जाएगी। सीधी होने से ऋतुएं बहुत सुखदाई, ऐसी नहीं बरसात बहुत हो रही है, थोड़ी थोड़ी सर्दी भी, थोड़ी थोड़ी गर्मी भी, बहुत थोड़ी सुखदाई सब हो जाएगा। वसंत बहार रहा करेगी इस धरा पर, तो प्रकृति हमारी पालना भी करेगी, लेकिन इस विनाश काल में इतना ज्यादा परिवर्तन होगा, जैसे मैंने कहा वो कल्पनातीत है कि ये धरा, ये प्रकृति सारी ग्रहों की लोकेशन भी बदल सकती हैं, बहुत बड़ा चेंज होगा। मैं सोचा करता हूं, अब ये मेरी कल्पना भी हो सकती है कि एटम बॉम्ब से जहां महाविनाश होगा, वहां ये जो प्रकृति में पोल्यूशन है, गंदगी है हवा में, ये भी तो स्वच्छ हो जाएगी अग्नि से या नहीं? सोचो जो पढ़े लिखे भाई बहने हैं, बहुत गंदगी है हवा में, सब साफ हो के स्वच्छ वायु हमें मिलेगी। तो विनाश का एक पहलू पाप की समाप्ति, पापियों की समाप्ति, लेकिन दूसरा पहलू भी है स्वर्ग की तैयारी। तो विनाश को हम दोनों रूप से देखेंगे और इसमें क्या क्या होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखने वाले बहुत कम बचेंगे और तब रिसर्च का समय नहीं होगा कुछ भी, मनुष्य सोच नहीं पाएगा, अनेक लेबोरेटरीज भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन होगा आश्चर्यजनक परिवर्तन।
सतयुग में हमारी दिनचर्या कैसी होगी, क्योंकि वहां तो हमें कोई कारोबार भी नहीं करना है, भोजन भी नहीं बनाना है, दास दासी प्रजा हमारे आगे पीछे रहेंगे, तो वहां हम सारा दिन अपना समय कैसे बिताएंगे और इतना अथाह जो धन होगा उसे हम कहाँ यूज करेंगे?
ये भी बाबा के सामने प्रश्न आया था जब अभ्यक्त बाबा मुरली चला रहे थे, कहा सवेरे उठेंगे आराम से तैयार होंगे, ऐसा नहीं भोजन बिल्कुल नहीं बनेगा, कुछ तो तैयारी करनी होगी, अगर 36 या 56 प्रकार के भोजन खिलाने तो कोई तो लाएगा या सब तोड़ के ही खाएंगे, तैयारी तो करनी पड़ेगी हर चीज की। राज का कारोबार भी थोड़ा बहुत तो चलेगा जरूर, बाजार होंगे, लेन देन होगा। अब आप सोच लीजिए कपड़े सब पहनेंगे सुंदर सुंदर, वो बनेंगे या नहीं? धागों से कपड़े बनते हैं, फैक्ट्रियां होंगी या नहीं? कपड़े बनेंगे, पॉलिशिंग होगी, जरी होगी हीरो और सोने की, उसका बड़ा कारोबार चलेगा या नहीं? कपड़े सिलाई होंगे, सिलने वाले होंगे, तो सारे काम तो चलेंगे ना, देवता कोई निकम में थोड़े ही रहेंगे कि कुछ काम नहीं करना है, बोर हो जाएं सारा दिन, काम काज ऐसे ही चलेगा, दुनिया ऐसे ही चलेगी, सुखदाई होगी, विकार नहीं होंगे, प्यार बहुत होगा, अथाह संपदा होगी, लेकिन दिनचर्या सबकी सुंदर बीतेगी, टेंशन वाली नहीं।
व्रता जी आपने कपड़ों की बात कही,
जेवर भी तो बनेंगे, कितनी बड़ी कारोबार होगी जेवरात बनाने की,
मतलब सारे डिपार्टमेंट होंगे,
बहनें तो कितने जेवर पहनेंगी, रोज बदला करेंगी, चाहिए बहनों को, चाहिए,
वहाँ भाई भी पहनते हैं,
भाई पहनते हैं ना, तो भाइयों को भी चाहिए, तो ये कारोबार भी तो बड़ा चलेगा ना, लेकिन होगा रिफाइंड सब कुछ। ये जो विज्ञान है ये हमें ऐसी इन्वेंशन करके देके जाएगा कि जिस काम में आजकल 8 घंटे लगते हैं वो 1 घंटे में पूरा हो जाया करेगा, ये गति हमारी फास्ट हो जाएगी।
जी जी, मतलब हर चीज रिफाइन होगी, चाहे वो खेती हो, चाहे वो सोने आदि का कार्य हो, भवन आदि। आपने कपड़ों की बात कही तो एक देवता दादी की ही बात थी व्रता जी, उन्होंने अपने किसी क्लास में ये बात कही थी और मुरली में भी संभवतः ये बात आई है कि राजा रानी एक बार यूज की हुई ड्रेस को फिर से यूज नहीं करेंगे और दिन में कम 5-6 बार अलग अलग कार्यों के हिसाब से ड्रेस पहनेंगे, तो जो ये एक बार उतार के रख दिया गया ड्रेस है वो कहाँ जाएगा और क्या अन्य देवी देवता भी ऐसा ही करेंगे?
नहीं, मुझे तो इसमें अतिशयोक्ति लगती है, ठीक है राजा रानी एक बार ड्रेस उतार देंगे पहनने वाले बहुत होंगे, लेकिन इसका ये नहीं कि पांच बार ड्रेस बदलेंगे फिर तो यही सबसे बड़ा काम चलता रहेगा उनका सारे दिन। वो कभी बड़े फंक्शन है, राज दरबार लगाना है, मैरिजिज है, चलो घर में कुछ और पहनी, जैसे आप भी करते हैं मैरिज में फंक्शन में कुछ और पहन लिया, ये सब चलता रहेगा।
जी जी
बहन जी आ गई भाई।
भ्राता जी प्रश्न तो खैर बहुत सारे हैं और हम जरूर इस पे और भी चर्चा करेंगे, स्वर्ग पे तो जितनी बातें हों जितना जाने बहुत कम लगता है,
लेकिन
अंततः मैं आपकी तरफ से जानना चाहूंगा भ्राता जी कि आप हम सबको उस सतयुगी दुनिया में चूंकि अब हमें चलना है क्या विशेष ध्यान रखें, पुरुषार्थ करें और कैसे उसे अपने नशे में लाएं, वो हमें पुरुषार्थ।
आज की मुरली में था बाबा के बच्चे बन गए स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन उच्च पद पाने के लिए ध्यान देना है पढ़ाई पर। पढ़ाई का अर्थ ये नहीं होता कि मुरली पढ़ते रहें सारा दिन, पढ़ाई का अर्थ है जो हमारे चारों सब्जेक्ट हैं उनको धारण करना, ज्ञान को भी जीवन में लाना, जिन गुणों की बाबा वर्णन करता है उनको अपनाना, जिस योग की चर्चा है राजयोग की उसका बहुत अभ्यास करना। सारी पढ़ाई का चारों सब्जेक्ट का अर्थ है स्थिति को श्रेष्ठ बनाना, और स्थिति श्रेष्ठ का अर्थ है हमारी प्योरिटी बढ़े, हमारी भावनाएं श्रेष्ठ हों, हमारे छोटे छोटे जो मनोविकार हैं मैं तू तेरा मेरा ईर्षा नफरत, इनसे हम मुक्त हो जाएं, हमारी भावना श्रेष्ठ हो जाए, हमारा व्यवहार हमारे बोल नम्रता और मधुरता से भरपूर हो जाएं, हमारा टोटल जीवन सुखदायी हो जाए, देखने वालों को लगे ये ईश्वरीय कुल के हैं, ये भगवान की संतान हैं, ऐसे श्रेष्ठ योगी जो बनेंगे, पवित्रता में जो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे वो सतयुग में श्रेष्ठ पद के अधिकारी होंगे। यही हम सबको करना है, बात सतयुग की नहीं, वो आने वाले 10 वर्षों में इस सृष्टि पर बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ा। भगवान की जो स्थापना है उसकी आत्माएं उसके बच्चे जो कष्ट पाएंगे उनको सकाश देकर कष्टों को मिटाएंगे, उनके विघ्नों को हरेंगे, रोगों को समाप्त करेंगे, ये महान कार्य हम सबको करने हैं। इसके लिए अपने को समय देंगे, योग का समय निकालेंगे, स्थिति को महान बनाएंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी हम सबके को स्वर्ग का दर्शन कराने के लिए, उसके लिए प्रेरित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए। आप सबके लिए दिल से अनंत दुआएं और शुभकामनाएं हैं कि आप सब स्वर्ग में ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करें और वर्तमान पुरुषार्थ भी आपका बहुत सहज और सरल हो। चलिए अब अंततः उसी स्वर्गिक दुनिया में चलते हैं, उसकी अनुभूति में खो जाते हैं। ओम शांति।